अन्वय ने तिरछी मुस्कान के साथ विश्वास को देखा और वहां से बाहर निकल गया। मैं नहीं, अब तू करेगा जो करेगा। आन्या का नाम इनमें कहीं भी नहीं आना चाहिए, मुझे बस इतना पता है। अब तू ये कैसे करेगा ये तू सोच। मिटा दे सबूतों को, ये तेरे लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं। विश्वास अपना सर पकड़ते हुए परेशान होकर बोला, ये लड़का किसी दिन मेरी नौकरी हजम कर जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। इतने बड़े बड़े कांड कर देता है और फिर भी एकदम बेफिक्र रहता है। अजीब नमूना है ये भी। पर अब तुझे ही कुछ करना होगा। ये तो दीवाना हो गया है उस लड़की के पीछे, पर उसके पागलपन की वजह से मैं उस निर्दोष लड़की को इन सब में फंसने नहीं दे सकता। कुछ तो करना होगा मुझे, वो भी जल्दी। इतना कहकर वो जल्दी से घर से निकल गया। अन्वय वहां से सीधे कॉलेज चला गया। सारा दिन वही रहा, फिर शाम को वापस जंगल चला गया। आन्या अन्वय का इंतजार कर रही थी, पर वो नहीं आया। आखिर में वो इंतजार करते करते सो गई। खाने की प्लेट टेबल पर रखी हुई थी, मतलब साफ था कि उसने डिनर नहीं किया था। देर रात को अन्वय लौटा। आन्या से दूर जाने का फैसला तो कर लिया था, पर अब उसका चैन छिन गया था। आज फिर वो आन्या को अपनी बाहों में भरकर लेट गया। अगले कुछ दिन यूं ही बीते। आन्या अन्वय से बात करने के लिए तरस गई थी। अन्वय सुबह जल्दी जाता और रात को उसके सोने के बाद वापस लौटता, फिर उसको अपनी बाहों में भरकर सो जाता और उसके जागने से पहले ही उठ जाता, जिसे आन्या को पता नहीं चलता था कि रोज रात को वो अन्वय की बाहों में समाकर सोती थी। आन्या घर में अकेली रहती थी और बस अन्वय के बारे में सोचती रहती। उसके जख्म भी अब कुछ हद तक भर गए थे। वो बहुत उलझ गई थी अन्वय को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर। वो उसके साथ बैठकर बात करना चाहती थी, पर अन्वय यही करने से बच रहा था। विश्वास ने आन्या का नाम कहीं आने नहीं दिया था और आन्या का सारा सामान वहां से निकालकर अन्वय तक पहुंचा दिया था। अन्वय अब आन्या की सेफ्टी का इंतजाम करने में लगा था, क्योंकि अब उसे वापस जाना था। आज भी वो देर रात वापस आया और आन्या को अपने सीने से लगाकर सो गया। आन्या आज उसके सीने से चिपक कर सो गई। अन्वय का दिल धड़क उठा। सारी रात उसे नींद नहीं आई। आन्या की गर्म सांसें उसके सीने से टकरा रही थी, जिससे उसके दिल में खलबली मची हुई थी। वो सारी रात जागता रहा, फिर सुबह उसको खुद से दूर करते हुए उठकर खड़ा हो गया। वो बालकनी में चला गया। आन्या आज जल्दी उठ गई। अन्वय कुछ देर बाद अंदर आया तो आन्या घर साफ कर रही थी। आन्या ने नजरें उठाकर उसे देखा। अन्वय ने भी उसे देखा, फिर अलमारी की तरफ पढ़ते हुए बोला, मैंने काकी से बात कर ली है, कल से तुम उनके साथ नीचे वाले रूम में रहोगी और उनके साथ ही काम करोगी। मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा, अब से तुम्हें उनके साथ ही रहना है, तो अपना सामान पैक कर लेना। आज दोपहर को मैं जल्दी आ जाऊँगा, तब सामान नीचे शिफ्ट करवा दूंगा। इतना कहकर वो बाथरूम में घुस गया। आन्या हैरानी से उसको देखती ही रह गई। उसकी बात याद करके उसकी आंखें भर आईं। उसने उन्हें आज भी बाहर नहीं आने दिया और वापस अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद अन्वय रेडी होकर बिना आन्या से कुछ कहे ही निकल गया। आन्या आज बहुत उदास थी। वो नहाकर बाहर आई, पर खाने का मन नहीं था तो उसने कुछ सोचकर सिमरन को फोन लगा दिया। आज सिमरन अकेली ही ऑफिस जा रही थी। राहुल किसी काम से दिल्ली गया हुआ था। वो चलते हुए ऑफिस जा रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने आन्या का नाम देखा तो फोन उठाकर मुस्कुराकर बोली, ओहो, तो आज तुम्हें फुर्सत मिल गई मुझसे बात करने की। अन्वय के साथ तो तुम्हें दुनिया की खबर ही नहीं रहती ना। उसकी शिकायत सुनकर आन्या और उदास हो गई और मुंह लटकाते हुए बोली, ऐसा नहीं है, वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता और अब मुझे अकेला छोड़कर जा भी रहा है। क्या मतलब कि अकेला छोड़कर जा रहा है? क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है? सिमरन ने कुछ हैरान होते हुए सवाल किया। आन्या ने एक बार फिर मुंह लटकाते हुए कहा, नहीं, लड़ाई नहीं हुई है, पर वो कुछ दिन से कह रहा था कि वो मुझे छोड़कर चला जाएगा और आज उसने मुझे कहा कि मैं अपना सामान पैक कर लूं। अब से मुझे नीचे काकी के साथ रहना है और वो कल यहाँ से चला जाएगा, पर मैं उसके बिना नहीं रहना चाहती। पता नहीं क्यों, पर मुझे ये सोचकर ही बहुत बुरा लग रहा है कि वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पता है कितने दिन हो गए उसने ठीक से मुझसे बात भी नहीं की है। मुझे सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है उसके बिना। मैं उसे दूर नहीं जाना चाहती, पर वो मुझे अपने साथ नहीं रखेगा। वो कहता है कि मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, बस एक आम लड़की हूँ, पर वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं नहीं रह सकूंगी उसके बिना। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उसे रोको ना, इतना सोच क्या रही हो? बताओ उसे कि प्यार करती हो उससे। डोंट टेल मी कि अभी तक तुम्हें ही इस बात का एहसास नहीं है कि तुम उससे प्यार करती हो। प्यार? आन्या ने हैरानी से कहा। तो सिमरन ने आगे कहा, देखो आन्या, तुम मानो या ना मानो, तुम उससे प्यार करती हो और वो अकड़ू भी तुम पर मरता है, पर शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए भाग रहा है तुमसे। अब तुम्हें उसे खुद से दूर जाने के लिए रोकना होगा। अगर तुम भी अन्वय के लिए अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करोगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अन्वय तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और तुम उसके बाद बैठकर उसके लिए तड़पती रहना। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए जो कहूंगी तुम्हारे भले के लिए ही कहूंगी। तुम और अन्वय दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। अगर वो पहल नहीं कर रहा तो तुम उसकी तरफ कदम बढ़ाओ और रोक लो उसे खुद से दूर जाने के लिए। चलो अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, या एक काम करूंगी, आज हाफ डे में तुमसे मिलने आ जाऊंगी। अभी मुझे ऑफिस जाना है तो फोन रखना होगा मुझे। आनिया ने उदास मन से उसे बाय कह दिया और बेड पर लेट गई। सिमरन ऑफिस में चली गई, पर उसके पीछे कोई था जिसने उसकी बात बहुत गौर से सुनी थी और अब उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसे उसका शिकार मिल गया जिसके लिए वो बहुत वक्त से यहाँ वहाँ भटक रहा था। आनिया अब सिमरन के आने का इंतजार कर रही थी। सिमरन भी 12 बजे उसके घर के लिए निकल गई। वो साया भी उसके पीछे ही था। कुछ 12:30 बज रहे थे। उसके रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई तो आनिया झट से उठ खड़ी हुई और भाग कर जाकर दरवाजा खोला, पर जैसे ही उसने सामने खड़े इंसान को देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया।